शहीदो ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो।
काबिले फ़ख्र है मेरा बेटा जो आगाही के साथ जिसने शहादत हासिल की। ये उसका शौक भी था और जज्बात भी थे, उसकी तरबियत भी थी। मैं शहादत के फजाइल फ़लसफ़े पे कतई बात नहीं करूँगा, क्योंकि आगा मुबशर साहब वो सब कुछ कह चुके जो मैं कहना चाहता था। और हमारी तो तरबियत है पूरे साल उलमा इकराम हमें शहादत के बारे में बताते हैं और हम लोग भी पढ़ते हैं। मेरे बच्चे की तरबियत की कैफियत ये थी कि जब वो पाँचवीं क्लास में था तो बाकायदा तौर पे स्कूल से जब आता था घर तो अपनी दोनों बहनों से कहता था कि मैं राशिद मिन्हाज बनूंगा। और बड़ी बेटी से मेरी कहता था, जो उससे 2 साल बड़ी थी, कहने कि बाजी आप मुझे तकिया मारना। और छोटी से कहता था कि मैं गिरूंगा, शहीद हो जाऊंगा तो मुझ पे चादर उड़ाना और रोना मत। ये खेल उसने फर्स्ट ईयर तक किया और उसके बाद उसका आर्मी में सिलेक्शन भी हुआ। बड़ी मेहनत की उसने, बहुत सारी नसीहतें देकर गया अपने आमाल के ज़रिए से। मैं क्योंकि उन खुश नसीबों में से हूँ जो इनकलाब ईरान में था, तो मैं उसको गाहे बागाहे वहाँ के किस्से सुनाया करता था कि लोग किस तरीके से जाने देते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं। इमाम खुमैनी के एक पैगाम के पीछे वो जो पर्ची सिस्टम था उस पे लगभग पूरे ईरान में 196, ये सेंसस है वहाँ का, लोग शहीद होते थे। तो वो मेरी वो बातें जो मैं ईरान की सुनाता था उसको, इनकलाब की, वो सारी एक्टिविटीज छोड़ कर बैठ जाता था। उसका कोई खेल नहीं था, स्टडी और वॉर स्टडी। किसी भी इवेंट में कभी वो सेकंड नहीं आया। मसलन फौज के जितने भी ट्रेनिंग्स होती थी उसमें इंटर में उसके मैथमेटिक्स में 98 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। वो 3 दिन घर से ना निकला, कह लिए 2 नंबर कम कैसे हुए। वो प्रोफेसर फयाज साहब ने उनको बताया कि बेटे राइटिंग कहीं गलती हो गई होगी कुछ, कह लें कॉपी चेक कराओ। वो ग्रेजुएशन कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी से। मीनवाइल जब एड आया तो उसने पार्टिसिपेट किया और मुख्तसर ये कि रिकमेंड हो गया, सिलेक्शन हो गया, 2 साल की ट्रेनिंग ली। उसके बाद उसके मुंह से जो बात निकलती थी वो शहादत की होती थी। मुझे फ़ख्र है कि वो जब भी बात करता था कहना पापा, और जब भी उसके मैसेजेस आए जो अब भी मेरे पास महफूज हैं बे इंतहा सैकड़ों मरतबा, वो ये कहता था पापा तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली लगेगी।
शहीद की जमात है, मुकाम की हयात है। शहीद की जमात है, मुकाम की हयात है।
पीठ पे नहीं लगेगी। उसने कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसमें ملک سے محبت کی کوئی کمی ہوئی ہو. ہر جگہ جذباتی انداز میں بچوں کو سمجھاتا تھا, محلے کے لڑکوں کو سمجھاتا تھا, ترغیب دیتا تھا کہ آپ لوگ قومی ادارے میں آئیں, فوج میں آئیں, بڑے اداروں میں جائیں, بیوروکریسی کی طرف جائیں, پڑھائی کی طرف توجہ دیں. پاکستان سے باہر بھی ٹریننگز پہ کئی مرتبہ کئی جگہ پر گیا. لیٹلی وہ آیا تھا چائنا سے, بیسکلی وہ ڈرون اسپیشلسٹ تھا اور میزائل اسپیشلسٹ تھا. اور مجھے یہ فخر ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت سب سے تیز رفتار میزائل ہے وہ میرے بیٹے نے ٹیسٹ کیا تھا. بارڈر پہ جانے کا مقصد اس کا یہی تھا کہ شہادت ہو اور جہاں مرضی سے ہو. سیاچن کے محاذ پہ اس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, وہ 6 مہینے کے بجائے وہاں 6 مہینے کی پوسٹنگ ہوتی ہے, 10 مہینے گزارے اور ماشاءاللہ بہت ہی زوردار قسم کے گزارے, جسے بہادری, جوان مردی, بہترین کمانڈر, کمپنی کمانڈر تھا وہاں. اب جو جہاں شہادت ہوئی ہے اس کی, گروسل گیٹ پہ محمد ایجنسی میں پاک افغان بارڈر پر, تو والنٹیئر گیا تھا کیونکہ وہاں کیجولٹیز بہت ہو رہی تھیں. اس نے والنٹیئر کیا اپنے آپ کو کہ میں وہاں جا کر سنبھال لوں گا. کمانڈو وغیرہ کیا ہوا تھا, جسمانی طور پہ بھی ماشاءاللہ طاقتور تھا, قد میرے سے بڑا تھا, 6 فٹ 4 انچ قد تھا اس کا, کسی اور ایکٹیویٹی میں نہیں تھا. محلے کے جتنے بے روزگار بچے تھے اس میں سے اکثریت بچوں کو اس نے جاب کرائی کہ بچے خراب نہ ہوں. کچھ پیغامات دیے اس نے, کیونکہ وہ کوشش کرتا تھا کہ ہمارے نوجوان فورسز میں آئیں, ہمارے نوجوان سی ایس ایس کریں, یہ تبلیغ کرتا تھا وہ. اس کی شہادت کے بعد میں نے وہ بیڑا اٹھایا اور مجھے بھی اعزاز ہے کہ میں نے کراچی میں 4,000 سے زیادہ بچے بچیوں کو فل فریشپ 8ویں سے گریجویشن تک پڑھایا. بہت سارے ٹیوشن سینٹرز کھولے تھے, ایک پیسہ نہیں لیتے تھے ان سے. تو وہ مجھ سے کہتا تھا, پاپا جب کبھی موقع ملے تو ایک کیڈٹ کالج اور ایک نامی گرامی کالج آپ بنائیے گا. کہنے لگا, مجھے یہ یقین ہے کہ میں زیادہ آگے نہیں جا سکوں گا عمر کے حوالے سے. گھر میں بات ہوتی تھی, کہنے لگا, پاپا میجر کے اوپر ہی ہے اکتفا. حالانکہ وہ ٹاپر تھا, ہر کورس میں ہر ایونٹ کے اندر ٹاپ کرتا تھا, لیکن شاید اسے آگاہی تھی کہ وہ میجر کے رینک پہ ہی شہید ہو جائے گا. ایون شہادت سے ایک دن پہلے اس کا وائس میسج آیا کہ پاپا کل, ٹمورو از اے بگ بیٹل, ایک بڑی لڑائی ہے اور دشمن جو ہیں وہ یعنی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کی انڈر کمان 482 کلومیٹر کا ایریا تھا اور یہ بات قابل تحسین ہے کہ جس دن اس نے چارج سنبھالا اس کے بعد کسی نے بارڈر کراس نہیں کیا, یعنی وہ مار دیا جاتا تھا. پہاڑ کے دوسری طرف داعش تھی اور پہاڑ کے اوپر یہ جتنی بھی فینسنگ تھی, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, آغا صاحب نے بڑی زبردست مثال دی تھی, میں نے اس پہ بڑا اپریشیٹ کیا آپ کو. وہ فینسنگ کو کمانڈ کر رہا تھا, سپروائز کر رہا تھا اور پورے مومن کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا. तो रात को उसका वॉइस मैसेज आया कि पापा अस्सलाम वालेकुम। कोई और बात नहीं की उसने, हालांकि हमेशा वो बात करता था, बहनों का पूछता था, भाइयों का पूछता था, रिश्तेदारों का, अम्मी की कब्र पे गए कि नहीं गए, माँ के लाडले भी बहुत ज़्यादा थे। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खसूसी ख्याल रखिएगा, क्योंकि कल आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, और वो जिम्मेदारी उसकी तीन बेटियों की है। दो बेटियां उसकी दो दो साल की हैं और एक बेटी उसकी 3.5 साल की है। बीवी को SMS किया कि मुझे ये महसूस होता है कि मैं कल शहीद हो जाऊंगा, तो गम ना करना, ये बहुत बड़ा मर्तबा है। वो बीवी को समझा रहा है, SMS किया है उसने। और अगर मैं राह हक में शहीद हो जाऊं तो मेरी माँ की कब्र के बराबर मुझे तदफीन देना। वो मुझे SMS उसने पढ़वाया, ईमान और ताज़ा हो गया कि उसको पता था, उसके बावजूद लग्जिश नहीं आई। इसे ही तो बहादुरी कहते हैं। पूरी कमान बेहतरीन अंदाज में की, सब्र की बात यह है कि उसका निचला धड़ बिल्कुल नहीं था, उड़ गया था। एक पांव तो उसका तकरीबन लेफ्ट लेग 120 फीट दूर से मिला था। इस जख्मी होने के बाद 21 मिनट तक सांस ने उसका साथ ना छोड़ा, और उसने उस 21 मिनट में जो उनका साथी था जो कहता था कि शाह साहब आपसे पहले मैं शहीद हो जाऊंगा, तो वो जब नीचे गिरा, जाहिर है उसका आधा धड़ नहीं था, तो वो मुस्कुराया, क्योंकि वो उसका वो साथी जो क्लेम करता कि पहले मैं शहीद हो जाऊंगा, वो उसके पास खड़ा था, उसका कमांडो गार्ड भी था। तो उससे इशारा किया और फिर ये इशारा किया और फिर ये इशारा, क्योंकि उस वक्त आवाज़ स्लो हो गई थी उसकी, कि आप देख लो मैं परफेक्ट जा रहा हूँ, जिसके नसीब में होती है उसी को मिलती है। 3 महीने पहले उसकी छोटी बहन की शादी हुई, तो उसमें मैंने कहा यार अदील, ये अब मैं कुछ रेस्ट करूँगा, क्यों तुम्हारे दादा की डेथ हो गई, सारे बहन भाइयों को पालने वाला अल्लाह की ज़ात होती है, मौला पाक पालते हैं, पढ़ाया लिखाया, सबकी शादियाँ की, उसके बाद आप लोग आ गए, आप लोगों को तरबियत दी, पढ़ाया लिखाया, तो अब मैं रेस्ट करूँगा, मेरी आखिरी बच्ची की शादी है। तो बड़ी ज़ोरदार कहकहा मारा उसने और फरमाया कि पापा ज़िम्मेदारियाँ तो आ सकती हैं, ये ना समझेंगे आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, ये 3 महीने पहले की बात है। वो कहना इन्हें कौन पालेगा, बच्चियाँ उसके साथ थीं। मैंने कहा भाई ये तुम्हारा मामला है। कहले नहीं, ये तो मामला अल्लाह का है, लेकिन जहन में ये ना रखें कि आप रिटायर हो रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी रिटायर्ड। मैं अब एक जतन में हूँ, एक काविश में हूँ कि जो वो सोचता था उसको पूरा कर दूँ, और इसी लिहाज से मैंने एक NGO बनाई जो अप्रूव हो गई है, शहीद मेजर अदील शाहिद फाउंडेशन इस नाम से। और इस फाउंडेशन के तहत इरादे मेरे ये हैं कि मैं एक कैडेट कॉलेज और एक कॉलेज ये बनाऊँ, जो लाइन ऑफ एक्शन उसने बताया उसको फॉलो करूँ, हमारे बच्चे ये वहाँ से इस्तेफादा लें, फौज में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं, आर्मी में जाएं, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, अच्छे अहदों पर जाएं। तो ये सिलसिला मैंने तकरीबन इन दो महीनों के अंदर शहादत के बाद इसको तरतीब दे दिया है। अगले चंद माह में ये एक्टिविटी आप भरपूर अंदाज में देखेंगे। अदील की बहुत सारी बातें हैं जो नौजवानों के लिए बड़ी अट्रैक्शन की बातें हैं। जानता था वो कि मैं शहीद हो जाऊंगा। इसी जाफर तैयार में उसके केजी का एक दोस्त रहता है अनम रिजवी, तो सुबह शहादत होनी रात को 2 बजे वो वहाँ पर वॉइस मैसेज कर रहा है, क्यों वहाँ से कॉल नहीं हो सकती थी, कह रहे यार अनम अम्मी से बात कराओ, आज वालदा बहुत याद आ रही हैं और कल मैं शहीद हो जाऊँगा तो आज तुम्हारी अम्मी से बात कर ही लूँ, खाला से बहुत दिनों से बात नहीं की। उनको बताया, कह रहे खाला वालदा बहुत याद आ रही हैं और कल का दिन अच्छा दिन है, मैं परसों आ जाऊंगा आपके पास। परसों वो आया तो सही, लेकिन तदफीन के लिए आया। मेरी छोटी बहन होती हैं पाकिस्तान से बाहर, उनको वॉइस मैसेज किया, वो सर्वतमंद हैं तो हमेशा कहती थी कोई डिमांड करो यार, कोई बात बताओ, कोई पैसे चाहिए कुछ, तो वो कहता था नहीं ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वॉइस मैसेज पे फरमाते हैं कि मोना आंटी आप हमेशा कहती थी ना कि कुछ कर दो, आज एक डिमांड है, मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ के लोग नहर का पानी पीते हैं, 50% से ज़्यादा गुर्दों के मरीज हैं, पानी साफ नहीं है, तो आप यहाँ कुएँ खुदवा दीजिएगा फिल्टर वाले, एक प्राइमरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल और एक कॉलेज, इतनी बड़ी बड़े इलाके में आप ये बनवा दीजिएगा। उसने कहा बेटा बेफिक्र रहें, उसने कहा अभी तो वॉर जोन है ये, आप लोग नहीं आ सकते हो, लेकिन जब भी थोड़ी सी भी फुर्सत मिले तो ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। अब उसके जहन में नहीं आ रहा कि ये ऐसा कह रहा है तो ये नहीं कह रहा कि मैं खुद देख लूँगा इसको। वो उसकी शहादत के बाद वो फिर मुझे बता रही, वॉइस मैसेज भी उसने मुझे भेजा, वहाँ से तो शुरू नहीं किया हमने, कुओं का काम शुरू कर दिया वैसे ही जैसे उसने बताया था। हम थर में 35 गांवों के अंदर कुएं लगा रहे हैं, उसमें से कई कुएं ऑपरेटिव हो चुके हैं, काबिल इस्तेमाल हैं पीने के लिए, PCSIR से उनका रिजल्ट भी लेते हैं, एक यतीम खाना बनवा रहे हैं, वो यतीम बच्चों को बहुत प्यार करता था। औरंगी में उसकी छत वत पड़ चुकी है, काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। मेरी ताकत तो आप लोग हो, मैन पावर आप लोग हो, मैं आपसे सिर्फ ये चाहूँगा कि जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे कदम के साथ आपके कदम हों, शहीद के नसीहत के मुताबिक हम वो खिदमात अंजाम दे सकें जो वो चाहता था। बच्चों की तरफ तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाइए, खाली स्कूल ना भेजिए, उनकी तरबियत में کوئی کمی نہ کیجیے گا. میں بالخصوص ماؤں سے مخاطب ہوں, کیوں باپ تو صبح جاتا ہے ڈیوٹی پر تو شام کو آتا ہے. علاوہ ازیں وہ صرف میرا بیٹا نہیں تھا, وہ آپ سب کا بیٹا بھی تھا, بھائی بھی تھا, دوست بھی تھا. آج کا یہ پروگرام آئی ایس او نے ترتیب دیا, میں آئی ایس او کا بھی مشکور ہوں. بچے ہیں ہمارے, یہ ان کے لیے پہلے بھی حاضر تھے, آج بھی حاضر ہیں, آئندہ بھی حاضر رہیں گے. السلام علیکم.